आप हैं SBS हिंदी के साथ। आज के मुख्य समाचार में, विकलांग बच्चों पर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने मांगी माफी, हेती प्लेन क्रैश में तकरीबन 5 लोगों की मौत और खेल में IPL 2022 के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 9 विकेट से दी शिकस्त। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने विकलांग बच्चे न होने की वजह से अपने आप को धन्य बताने के लिए माफी मांगी है। उनका कहना है कि कल रात नेताओं की बहस के दौरान दी गई टिप्पणी ने से उनका कोई गलत इरादा नहीं था। राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले एक बच्चे के माता पिता के प्रश्न के जवाब में यह विवादित टिप्पणी दी गई थी।
And I've often referred to my own children as blessing, as you know. We were 14 years in the waiting to have our children. But my point was, I wasn't trying to imply that I could firsthand understand the challenges people face in those situations. I was seeking to respect the challenges they face, not the opposite. And I would hope that people would accept that at face value. And I deeply apologise for any offence that it caused.
श्री मॉरिसन का कहना है कि उन्होंने व्हीलचेयर टेनिस चैंपियन डिलन अल्कॉट के से बातचीत की और व्यक्तिगत रूप से इस टिप्पणी के लिए ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर से माफी मांगी। लेकिन लेबर सेनेटर कैथी गैलेगर, जिनकी बेटी को ऑटिज्म है, ने चैनल 7 को बताया कि प्रधानमंत्री को संवेदनशीलता से पेश आना चाहिए था।
And I think that, again, just shows a lack of connection with, you know, everyday people's lives. I mean, there's millions of us who live with children with a range of different needs, and I think to have a Prime Minister say he was blessed not to have one of those is deeply offending and deeply upsetting to those of us who have that wonderful addition in our family.
प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि उन्हें सोलोमन द्वीप और चीन के बीच सुरक्षा समझौते के जोखिम के बारे में पहले से ही जानकारी थी। इसके बावजूद उन्होंने पिछले हफ्ते केवल अपने प्रशांत मंत्री को ही राष्ट्र में भेजा था। मंत्री जेड सलेजा ने इससे पहले कहा कि उन्हें इस सौदे के बारे में तभी पता चला जब वे मीडिया में लीक हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि 2019 में चुनाव के बाद राजधानी होनियारा के दौरे के दौरान उन्हें इस क्षेत्र में चाइना के इरादों के बारे में पता चल गया था।
What I have said very plainly though is we have always been aware of the risk of an agreement like this. We've been aware of the Chinese seeking to obtain an agreement like this, as they have in Papua New Guinea and other countries in the Pacific.
फेडरल डिफेंस मिनिस्टर पीटर डटन के अनुसार चाइना दोनों देशों के बीच सुरक्षा समझौते के तहत सोलोमन में अपनी सैन्य उपस्थिति को तेजी से बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। हेती की राजधानी पोर्टो प्रिंस में हुई एक दुर्घटना में एक छोटा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्रैश हो गया है जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। ये विमान दक्षिणी तटीय शहर जैकमल की ओर जा रहा था और कैरफर में उतरने की कोशिश करते वक्त एक ट्रक से टकरा गया। पुलिस का कहना है कि उस हादसे में मरने वालों में ट्रक चालक भी शामिल था, लेकिन विमान का पायलट बच गया और उसे अस्पताल ले जाया गया है। प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने ट्वीट द्वारा बताया कि वे दुर्घटना से दुखी हैं और मरने वालों के रिश्तेदारों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। तास्मानिया के स्वतंत्र सांसद एंड्रयू विल्की ने ऑस्ट्रेलियाई नेताओं से विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को देश वापस लाने के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। रातोंरात एक ब्रिटिश न्यायाधीश ने जासूसी के आरोपों को सामना करने के लिए जूलियन असांज के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका लौटने की मंजूरी दी। श्री विल्की कहते हैं कि असांज की स्वतंत्रता अब एक चुनावी मुद्दा बन गया है।
So politicians, particularly Australian politicians, can stop hiding behind the excuse that the matter's before the courts, because it's now not before the courts. So there's now no excuse whatsoever for Scott Morrison and Anthony Albanese to pick up the phone to the British government and to make the case in the strongest possible terms for Julian Assange to be released and to be allowed to return to Australia.
असांज 2019 से बेलमार्श जेल में बंद हैं। ऑस्ट्रेलिया 20 देशों के साथ हुई समूह बैठक के दौरान रशिया का बहिष्कार करने के लिए अन्य देशों में शामिल हो गया है। जब रशिया के प्रतिनिधि ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बैठक को संबोधित करने की मांग की तो वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर कमरे से बाहर चले गए। यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के विरोध में अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जैनेट येलन और यूक्रेन के वित्त फेडरल मंत्री साइमन बर्मिंगहम ने ABC को बताया है कि ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने ऑनलाइन बैठक में भाग लेते वक्त दूसरों की तरह अपने कैमरे बंद कर दिए।
Yes, obviously you can't get up and walk out of the meeting in that context, but they removed themselves from participation in the meeting during the Russian engagement, and Australia continues to work as closely as we can during this election period with all of our international partners to put as much pressure on Russia as possible.
उधर विक्टोरिया के प्रीमियर डैनियल एंड्रूज ने राज्य की COVID-19 महामारी और वायरस से जुड़े शेष सभी प्रतिबंध जुलाई से समाप्त होने की संभावना बताई है। फिलहाल COVID-19 महामारी की घोषणा 12 जुलाई को समाप्त होने वाली है और डैनियल एंड्रूज का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि वे इस महामारी की घोषणा को खत्म करने में सक्षम होंगे, लेकिन श्री एंड्रूज ने इसकी कोई गारंटी नहीं दी।
Then you can't answer questions like that, because I don't know what independent expert advice I'm going to get in the days leading up to the 12th of July. It's my hope that we don't need that, or we need something less than that, or we need some other arrangement. That'd be terrific. Like, I've made it really clear to every Victorian, if you got vaccinated, then we would have more options. We'd be able to get rid of these rules. We'd be able to have, you know, a very different set of rules, hardly any rules at all, really.
प्रीमियर को महामारी घोषित करने का अधिकार देने वाला कानून और सार्वजनिक स्वास्थ्य आदेशों के लिए स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी पिछले साल संसद में दैनिक विरोध का विषय थी। विक्टोरिया ने कोविड के 10,600 से भी अधिक दैनिक आंकड़े और 11 मौतें दर्ज की हैं। उधर ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी ने यह सूचित किया है कि वह भी न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया की तरह कोविड पॉजिटिव लोगों के घरेलू संपर्क से जुड़े नियमों से बदलाव लाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों ने घोषणा की है कि इस शुक्रवार को कोविड पॉजिटिव लोगों के घरेलू संपर्कों में से 7 दिनों तक के अलगाव से जुड़े नियमों को रद्द कर दिया जाएगा और इसके बदले में लोगों को रोज रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की और मास्क पहनने और जहां तक हो के घर से काम करने की आवश्यकता होगी। ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी की स्वास्थ्य मंत्री रेशल स्टीवन स्मिथ ने कहा है कि ACT यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उनके सार्वजनिक स्वास्थ्य आदेश न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया से मिलते जुलते हों और उनकी सरकार इससे जुड़ी घोषणा करने की योजना बना रही है। उधर न्यू साउथ वेल्स में 17,447 नए कोविड मामले सामने आए और 16 लोगों की इस वायरस से मृत्यु हो गई है। वहीं विक्टोरिया में 10,674 नए कोविड मामले दर्ज हुए हैं और 11 मौतें हुई हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत ने बुधवार को कम से कम 2,067 नए कोविड मामले दर्ज किए। इसके साथ ही दैनिक COVID-19 मामलों में लगभग 65% की उछाल दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार देश का सक्रिय केस लोड 12,340 हो गया है और पिछले 24 घंटों में मरने वालों की संख्या 40 पहुँच गई है। इसमें केरल द्वारा जोड़े गए 32 बैकलॉग मौतें शामिल हैं। रिकवरी रेट फिलहाल 98.76% है। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज भी 74 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 56 रुपये और 71 पैसे हो गई है। खेल समाचार में आईपीएल 2022 का 32वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 9 विकेट से शिकस्त दी। पंजाब ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली को 116 रनों का टारगेट दिया। जवाब में दिल्ली की टीम ने 10.3 ओवर्स में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज वार्नर और पृथ्वी शॉ ने बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए 83 रनों की साझेदारी निभाई और पंजाब किंग्स की टीम को दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने 20 ओवर में 115 रनों पर समेट दिया। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में कल धूप रहने की संभावना, वहां का न्यूनतम तापमान 15 और अधिकतम 28 डिग्री तक जाएगा। एडलेड में आंशिक बादल रहेंगे और न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम तापमान 20 तक रहेगा। मेलबर्न में भी आंशिक बादल रहेंगे और यहां का न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम 18 डिग्री। कैनबरा में भी बादल छाए रहेंगे, वहां का न्यूनतम तापमान 5 और अधिकतम तापमान 18 डिग्री। सिडनी में बरसात की संभावना और वहां का न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम 21 डिग्री। ब्रिस्बेन में भी एक या दो बौछार पड़ने की आशंका, वहां का न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 26 डिग्री। डार्विन में ज्यादातर धूप रहेगी, वहां का न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 35 डिग्री तक जाएगा। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में धुंध भरी धूप रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान होगा 39 डिग्री। मौसम की जानकारी के साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हम हैं।